हम जो पिछले दिनों में सीरीज में जा रहे हैं वो यीशु मसीह के दावे हैं, क्लेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, सात दावों पर हम विचार कर रहे हैं। और आज कौन सा दावा है, कौन सा दावा है, हैं? नंबर कौन सा है, हैं? कितना नंबर, जोर से बोलिए। चार नंबर। पहला क्या है, देखे देखे भाई, देखे भाई किसका है ये मधुर की। पहला प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं। दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं, मैं द्वार हूं। चौथा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, चरवाहा नहीं अच्छा चरवाहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं। तो आज हम चौथे में जाएंगे और फिर पांचवें पे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। छठे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार सत्य जीवन मैं ही हूं। और सातवें प्रभु ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूं। सो हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम उसी चौथे में आगे बढ़ना चाहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। पिछले इतवार को जब हम देख रहे थे तो हमने यूहन्ना उसके 10 अध्याय को वर्णन किया था। जब बाइबल में चरवाहा के बारे में बात करते क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इन फरीसी सदूकी इन शास्त्रियों इन ये जो धर्म के ठेकेदार थे जो अपने आप को शिक्षक समझते थे क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उनके सामने बात करते हुए इस बात को कहा मैं अच्छा चरवाहा। प्रभु यीशु मसीह की सेवा का एक तरीका था, शिक्षा देने का एक तरीका था। और उनके शिक्षा देने का तरीका यह था कि वो वहां के लोगों को देखते थे, जानते थे, पहचानते थे और वहां की परिस्थितियों को या वहां की संस्कृति को या वहां की जो फसल है जिनको लोग उनको मुख्यतः ध्यान रखते थे उन बातों को लेकर वो लोगों से बात करते थे और लोगों को शिक्षा देते थे। लोगों से बात करते थे, लोगों से शिक्षा देते थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं पहले बता चुका हूं फिर दोहरा रहा हूं। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 14 अध्याय में कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए मैं एक स्थान तैयार करूं और फिर मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, क्योंकि वहां की एक संस्कृति थी और संस्कृति यह थी कि जब किसी की मंगनी होती थी यहूदी कल्चर में मंगनी होती थी तो दूल्हा जो होता था जो जिसके आने वाले दिन में विवाह होता था वो जाकर उसको एक निवास स्थान तैयार करना पड़ता था। और जब वो निवास स्थान तैयार कर लेता था तब वो मंगनी पक्की होकर विवाह में बदलती थी और तब वो उसको दुल्हन को ले आकर के अपने उस घर में ले जाया करता था। इसीलिए पौलुस अपनी पत्री में लिखते हुए कलीसिया को दुल्हन बताता है, दुल्हन बताता है वो हमारा दूल्हा है, यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। और उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यूहन्ना 14 अध्याय में बात कर रहा है। तो जब भी हम प्रभु यीशु मसीह की बातचीत को देखते हैं या उनके उदाहरणों को देखते हैं तो हम वो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां की परिस्थिति को, वहां की संस्कृति को, वहां के लोगों के खान पान को, उन सारी चीजों को ध्यान में रख करके उनको शिक्षा दी है ताकि लोग सरलता से समझ जाए। और जितने भी वो दावे कर रहा है उन दावों को हम देखते चले आ रहे हैं, किस प्रकार से रोटी के बारे में हम देखा, ज्योति के बारे में हमने देखा, किस प्रकार से द्वार के बारे में देखा और हमने उन स्थलों को देखा जो परमेश्वर के वचन में पाए जाते हैं। चरवाहा इसराइल के लिए चरवाही बहुत महत्वपूर्ण थी, आरंभ से उत्पत्ति की पुस्तक से हम पाते हैं। लेकिन मैं एक दो स्थल को ले जाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और जो आज हमने यज़कील की पुस्तक को पढ़ा है उसमें चरवाहों के दो तरह के चरवाहे दिखाई दिए गए। एक चरवाहा वो है जो झूठे चरवाहे हैं जो अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत करते हैं। वो कहते तो हैं कि हम तुम्हारे चरवाहे हैं और ये जितने शास्त्री फरीसी जो धर्म के ठेकेदार थे वो उनका स्वभाव उनका जीवन इसी प्रकार से था। और तब प्रभु यीशु मसीह उनको देखते हुए इस प्रकार की शिक्षा को देते हैं। तो बहुत स्थल है, यशायाह में है, यर्मिया में हमने केवल इजेकल को पढ़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए, लेकिन यसिकेल 34 अध्याय में ये पूरा 30 पद जो है उसमें दोनों गुण हैं, अगुण और अवगुण दोनों चीज पाई जाती है। घर में जाके आप अध्ययन करेंगे और आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लंबी लिस्ट मिलेगी ऐसे चरवाहों की जिनमें अवगुण पाए जाते हैं, जो झूठे हैं, धोखेबाज हैं, छली हैं, अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों को केवल छलते हैं और अपना पेट का पालन करते हैं। और ऐसे आज इस संसार में भी ऐसे कितने चरवाहे पाए जाते हैं जो केवल अपनी पेट की रोटी को भर रहे हैं, अपना स्वार्थ को पूरा कर रहे हैं, और हमें उनसे सावधान रहना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसमें यज़ेकेल में दूसरा वो चरवाहों का गुण है जो एक सच्चे चरवाहों का गुण है, परमेश्वर उसमें वचन लेता है, और तब उसके बाद परमेश्वर इस बात की भी प्रतिज्ञा करता है कैसे वो अच्छे चरवाहों को हमारे सामने लाएगा, अभी हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे। लेकिन आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 48 अध्याय। याकूब की मृत्यु होने वाली है, याकूब ने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया है। यह पद मेरे लिए बहुत ही प्यारा पद है, जेनेसिस चैप्टर 48। नाउ वी आर लुकिंग टुडे अबाउट ट्रू शेपर्ड। जीसस सेड आई एम ट्रू शेपर्ड। सो जेनेसिस चैप्टर 48 अध्याय 15 पद, और यहां पर याकूब जो है आशीष दे रहा है, याकूब आशीष दे रहा है, और आशीष देते हुए वो कुछ कर रहा है। 15 पद, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देते हुए कहा, परमेश्वर जिसके सामने मेरे पूर्वज इब्राहिम और इसहाक चले, परमेश्वर जो मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन का चरवाहा बना है। क्या कह रहा है? परमेश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरे जीवन का चरवाहा बना है। जब से मैं पैदा हुआ, याकूब मरने की स्थिति में अपने पुत्रों को इस समय वो आशीर्वाद दे रहा है, और इस बात की आशीर्वाद देते हुए वो इस बात को बता रहा है, अपनी सारी यात्रा को याद कर रहा है किस प्रकार से उसकी जीवन की यात्रा हुई, लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर मेरा अच्छा चरवाहा रहा है, उसने मेरी देखभाल करी है, उसने मुझे संभाला है, उसने मुझे अपने हाथों के साथ सुरक्षा प्रदान करी है, वो मेरा अच्छा चरवाहा बना है। उस समय जन्म से लेकर आज तक वो अपने जन्म को याद करता है, कैसे उसका जन्म हुआ था, आप सब याकूब के बारे में जानते हैं, पिछले दिनों में देख चुके हैं, और वो इस बात से कहकर आगे चल करके इसी अध्याय में फिर वो कहता है 49 अध्याय 24 पद, परंतु उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी भुजाएं याकूब के शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा प्रफुल्लित हुई, उसी के पास से वो चरवाहा अर्थात इसराइल का पत्थर आएगा। ये पहली भविष्यवाणी चरवाहे के आने के लिए, पहली भविष्यवाणी याकूब के द्वारा है, जहां पर उसने इस प्रकार से कहा वो चरवा आएगा जो इसराइल का पत्थर होगा, और प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर कहलाया, चट्टान कहलाया, और यही अंगीकार पत्रस ने कहा था, तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसी विश्वास पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊं, तू पत्रस, तू पत्थर है, इसी चट्टान पर। वो चट्टान पर पत्थर की नहीं थी, लेकिन वो चट्टान उसका अंगीकार था जो उसने ये कहकर कहा था यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यह हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर की सनातन योजना को जब हम देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा परमेश्वर कैसे किसी चीज को आराम से लेकर चल रहा है। तो यहां पर पहले हम इस अच्छे चरवाहे के भविष्यवाणी को देखते हैं। एक और पद मेरे साथ निकाल लीजिए, यशायाह में आइए, यशायाह उसका 59:20 पद, कोई निकाल के पढ़ दे मेहरबान से, यशायाह 59:20। हाँ, एक छुड़ाने वाला, यही चरवाह है, ये परमेश्वर के वचन, और बार बार परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी दी गई है, बहुत सारे पद हैं। सो क्या मतलब है जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो क्या मतलब है कि एक अच्छे चरवाहे की प्रतीक्षा की जा रही है। वो चरवाहा क्या करेगा, इसराइलियों को शुरू से परमेश्वर ने अपनी भेड़ करके संबोधित किया है। क्यों इसराइलियों को परमेश्वर ने अपनी भेड़ करके संबोधित किया है? क्योंकि इसराइलियों को परमेश्वर ने चुना था, उनको बुलाया था, उनको अलग किया था, उनको नियुक्त किया था। इसराइलियों को परमेश्वर ने चुना था, इसराइलियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया था, इसराइलियों को परमेश्वर ने बुलाया था, और इसलिए परमेश्वर ने उनको एक भेड़ करके आराम से बार बार संबोधित किया है। जब हम नए नियम में आते हैं तो ये लोग, यहूदी लोग, ये सोचते थे कि हम चरवाहे हैं और अब हम यहूदी हैं तो ये जो जितने लोग हैं वो हमारी भेड़ हैं, हम इनके साथ जैसा व्यवहार करें, जैसा चाहे वैसा व्यवहार करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये नहीं है, ये गलत है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 10वें अध्याय में जब हम आते हैं तो इस दावे को किया है। तो यहां पर हमने थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाकर देखा किस प्रकार से, और यूहन्ना का सुसमाचार जो है, ध्यान दीजिएगा, जब यूहन्ना इस सुसमाचार को लिख रहा है लगभग उसकी आयु 80-85 साल की हो चुकी है, लगभग उसकी आयु 80-85 साल की हो गई है। प्रकाश द्वारा के लगभग उसने 90 साल की आयु के आसपास लिखा है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी मृत्यु आती है। तो अब यीशु मसीह 30 साल की आयु के बाद, 30-35 साल की आयु में स्वर्ग पे उठा लिए गए, और इसके बीच में लगभग 50 साल का अंतराल है, 50 से 55 साल का अंतराल है। और अब यूहन्ना इस बात को देख रहा है, यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा, यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, यूहन्ना ने यीशु मसीह को छुआ, यूहन्ना ने यीशु मसीह को जाना। इसीलिए पहले यूहन्ना में लिखता है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, जिसको मैंने छुआ, जिसको मैंने सुना, जिसको मैंने जाना, उसका मैं वर्णन करता हूं। और यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते हुए ना केवल उसे सुना था लेकिन उसने जाना था कि यीशु मसीह उसकी कथनी में और करनी में फर्क नहीं है। अगर उसने कहा वो अच्छा चरवाहा है तो मैंने देख लिया कि निश्चय ही वो चरवाहा है। और 10वें अध्याय में दो चीजें हैं जो द्वार के बारे में हमने पिछली बार में दिखता, गेट के बारे में और आज चरवाह के बारे में देखें, लेकिन दोनों चीज साथ में मिली हुई है, दोनों साथ मिली है। और इसलिए हम यूहन्ना 10 अध्याय को फिर से आगे बढ़ते उसको देखना चाहेंगे और कुछ बात को क्रम से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न यह है, आप कलीसिया में आते हैं, आप आराधना करते हैं, आप मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, आप मसीह के आराधक हैं, सब कुछ जो भी आपका व्यक्तिगत जीवन आप जानते हैं, क्या आपके जीवन की ये सच्ची साक्षी है, ये आपके जीवन में सच्ची गवाही है? आपका विवेक, आपका मन, आपका हृदय सच्ची रीति से गवाही दे सकता है कि हाँ, यीशु मसीह ही एकमात्र मेरा चरवाहा है? ये सोचना है। आगे बढ़ने से पहले मैं इस चुनौती को आपके सामने रखना चाहता हूं, ये सोचना है क्या यीशु मसीह ही एकमात्र आपका या मेरा व्यक्तिगत रूप से चरवाहा है? सबका चरवाहा है, उसका है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध क्या है? जब हम विश्वास की बात करते हैं तो विश्वास की बात में परमेश्वर सामूहिक विश्वास की बात नहीं करता। जरूर सामूहिक विश्वास में प्रभु आशीष देता है, उत्तर देता है, प्रार्थना को उत्तर देता है, इसलिए हम समूह में होकर प्रार्थना करते हैं, परिवार में होकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन संबंध जो है परमेश्वर के साथ वो व्यक्तिगत आरंभ होता है, पर्सनल। यह हमें देखना है। तो ये चुनौती मेरे और आपके लिए। और जब हम इस बात में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर चरवाहों के बारे में कुछ और बात करता है। ये सच है, एक अच्छा चरवाह मेरे और आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार होता है। जब हम चरवाह की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन में हम बड़े उस उपनाम को देखते हैं जो 5 अलग अलग उपनाम चरवाह के लिए आए हैं। उसको पहले हम देखेंगे, तब हम आगे बढ़ना चाहेंगे ताकि और अधिक हम समझ सकें यीशु मसीह हमारा कैसे चरवाहा है। भजन संहिता 23:1, पहली बात आप जानते हैं क्या लिखा हुआ वहां पर, यीशु मेरा चरवाहा है, पहली बात है ना, यहोवा मेरा चरवाहा है ना, पहली बात। दूसरा, ना केवल यीशु चरवाहा है, परमेश्वर चरवाहा है,
पुराने नियम का, यहोवा नए नियम का यीशु है। मैं पिछली बार में समझा चुका हूं जब हमने आयम में देखा था मैं हूं, तो पुराने नियम का यहोवा नए नियम का यीशु है। तो यीशु यहोवा चरवाहा है, यीशु चरवाहा है, वो चरवाहा है, ना केवल चरवाहा है लेकिन यज़केल 34:11 जो हमने अभी पढ़ा है इसमें, यज़केल उसका 34 अध्याय उसका 11 पद यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं स्वयं ही अपनी भेड़ों को खोज करूंगा और उन्हें ढूंढ निकालूंगा। वो एक अच्छा चरवाहा है, वो चरवाहा है लेकिन वो सॉरी अच्छा नहीं सच्चा चरवाहा है, ही ट्रू शेपर्ड। 34:11 देखो मैं स्वयं ही अपनी भेड़ों की खोज करूंगा और उन्हें ढूंढ निकालूंगा। ना केवल यीशु चरवाहा है लेकिन यीशु सच्चा चरवाहा है। यन्ना उसके 10:10 में यीशु अच्छा चरवाहा है। पहला यीशु चरवाहा है, यीशु सच्चा चरवाहा है, 10:10 में यीशु अच्छा चरवाहा है। इब्रानियों उसका 13:20 में यीशु महान चरवाहा है, वो महान चरवाहा है, जीसस इज ग्रेट शेपर्ड, महान चरवाहा है। पहला पद उसका 5:5 उसके 4 में यीशु प्रधान चरवाहा है, यीशु जो चीफ शेपर्ड है, जीसस चीफ शेपर्ड। सो यीशु चरवाहा है, यीशु सच्चा चरवाहा है, यीशु अच्छा चरवाहा है, यीशु महान चरवाहा है, यीशु प्रधान चरवाहा है। ये 5 श्रेणी है हम इस चरवाहे के बारे में पाते हैं। केवल चरवाहा नहीं है लेकिन चरवाहे के साथ उसके साथ और गुण जुड़ गए। क्या गुण जुड़ गए? पहली बात, बहुत सारे चरवाहे वो झूठे चरवाहे हैं लेकिन यीशु कैसा चरवाहा है? वो सच्चा चरवाहा है। और दूसरे चरवाहों के साथ वे अच्छे नहीं है, वो अपने स्वार्थ में जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपने स्वार्थ के लिए चरवाही करते हैं, उन्होंने इसको अपने पेट भरने का साधन बनाया हुआ है। और वो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, उस व्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर करके उनके ऊपर दंड लगाते थे। माफ कीजिएगा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, यदि आप रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं, जो रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि से, जब उनके यहां जो पाप क्षमा की विधि है, अगर कोई पाप करता है तो प्रीस्ट के पास जाता है, प्रीस्ट के सामने जो पाप का अंगीकार करता है और प्रीस्ट उसको फिर दंड नियुक्त करता है, और उस पाप से मोचन प्राप्त करने के लिए जो दंड करता है वो उसको करना पड़ता है, करना पड़ता है। मेरे प्रिय, बहुत सारी ऐसे संसार में प्रथाएं बनी हैं जो आज भी हम संसार में जाते हैं। मैंने शायद पहले कभी बताया होगा कि एक बार हम 12 में जब थे और 12 में किसी ने दरवाजे को खटखटाया, मैंने दरवाजा खोला, मैं बाहर निकला, देखा एक अच्छे पति पत्नी उनकी गोद में बच्चा है और अच्छे कपड़े पहने हुए, और मैंने कहा क्यों भाई क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा हमें कुछ भीख दे दीजिए, हमें कुछ दान दे दीजिए। मैंने कहा आप तो अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, आप ये क्यों मांग रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं, दान क्यों मांग रहे हैं? उनकी आंखों में आंसू निकल आए, आंखों में आंसू निकल आए, और तब वो बड़ी वेदना के साथ, पीड़ा के साथ, उन आंसू के साथ ही कहने लगे कि हम फलाने गांव में रहते हैं, हमारे खेत में, हमारे पास खेत है, घर है, सब कुछ है, हमारे खेत में गाय चरने के लिए आई और हमने उसको भगाना चाहा और हमने उसको उठाकर पत्थर मारा, हमने कहा इसको ये भाग जाएगी, लेकिन वो धोखे से उस गाय के सर पर पत्थर लग गया और वो गाय मर गई। अब गांव के जितने भी प्रधान थे उन लोगों ने, सब ने, जो उनकी जो क्या नाम से पंचन होते हैं, जो भी होते हैं, उन लोगों ने मिल करके हमारे लिए सजा ठहराई, उन्होंने हमारी जमीन को अपने हाथ में रख लिया, उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, अब तुम अगर इस पाप से तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तुम्हें अपनी जमीन को, अपने घर को यहां छोड़ना होगा और तुम्हें जाकर भीख मांग करके जा करके गंगा में स्नान करना होगा, वहां भोजन खिलाना होगा, तब तुम्हारे इस गाय हत्या का पाप क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियो, जब मैं उन बातों को सुन रहा था मेरे हृदय में बहुत दुख, अच्छे लोग, पढ़े लिखे, पैसा, घर, धन, क्या है दुनिया के चरवाहे, कैसे चरवाहे हैं दुनिया में, किस प्रकार से आज लोगों को के साथ कर रहे हैं। मेरे प्रियम, उनको छोड़ दीजिए, अपने मसीहत में आ जाइए, कलीसियाओं में आ जाइए, प्रचारकों को देख लीजिए, क्या कर रहे हैं प्रचारक लोग, किस प्रकार से लोगों के साथ मखौल बना रहे हैं, किस प्रकार से मखौल बना रहे हैं, पैसा लूटना उनका साधन बना हुआ है ना, बड़े बड़े बंगलों में रहना उनका वो बना हुआ है आराम से बहुत, और क्या करते हैं जो बेचारे साधारण विश्वास के लोग हैं, ये खोजिए किसे, उनको साथ क्या कर रहे हैं, ये झूठे चरवाओं की, चाहे कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आप देख लीजिए, किसी परिपेक्ष में देख लीजिए, उस समय भी ये हो रहा था, नया नहीं है ये, उस समय भी हो रहा था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को समझाना पड़ा कि वास्तव से अच्छा चरवाह कौन है, अच्छे चरवाह के गुण क्या हैं, अच्छा चरवाह क्या करता है, कैसे हम जान सकते हैं ये अच्छा चरवाह है। वो अच्छा चरवाह अगर है तो क्यों वो अच्छा चरवाह है, अगर यीशु अच्छा चरवाह है तो क्यों वो अच्छा चरवाह है, अगर यीशु अच्छा चरवाह है तो कैसे वो अच्छा चरवाह है, क्यों कैसे, अगर वो अच्छा चरवाह है तो वो क्या करता है, इन बातों को हमें समझना है। जब हम इन चीजों का समझते हैं, क्यों अच्छा चरवाह, क्यों बुरा चरवाह, कैसे अच्छा चरवाह, कैसे बुरा चरवाह, क्या अच्छा चरवाह करता है, क्या बुरा चरवाह करता है, जब हम इनकी तुलना करते हैं तब हम समझ पाते हैं वास्तविकता क्या है। और मेरे प्रियो, दुख की बात यह है, जब हम बाजार में जाते हैं, गेहूं करते हैं तो 10 तरह के गेहूं को देख के वहां तुलना करके तब उसको लेते हैं, कपड़े आते हैं दुकान में फिलवा देते हैं, 10 कपड़ों को देखते हैं तुलना करते हैं तब हम उसको लेते हैं, कोई भी चीज बाजार में लेते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जब हम आत्मिक रीति की खोज करते हैं, वहां तुलना नहीं करते, वहां हम आंखें बंद करके रखते हैं, और यही तो शैतान का काम है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखों को बंद कर रखा है, अंधा कर रखा है, ताकि वो वास्तविकता को ना तो देखने पाए, ना समझने पाए, ना जानने पाए, ना अपनाने पाए। मेरे पियो, ये वास्तविकता है, और इसलिए हमें उस अच्छे चरवाहे को जानना है। क्यों हमारे निर्णय लेने में देरी हो जाती है, हम चले आ रहे हैं संगति में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन इधर भी क्यों नहीं निर्णय लेने पाते। इसलिए निर्णय नहीं पाते कि हमारी आंखें अभी भी बंद हैं, हम परख नहीं पा रहे इस संसार में अच्छा चरवा कौन है और बुरा चरवा कौन है, हम देख नहीं पा रहे हैं। हमारी आंखें खुली भी हैं, लेकिन हम दावा तो करते हैं कि आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी बंद है, जैसे हम पिछली बार देख रहे थे, ये अंधे चरवाहे मेरे प्रियो। और इसलिए मुझे आराम को अपने लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु परमेश्वर, काश आप मेरी आंखों को खोल दीजिए, मेरी समझ को खोल दीजिए, मेरी आंख को खोल दीजिए, ताकि मैं उस अच्छे चरवाह को देख सकूं, मेरी समझ को खोल दीजिए, ताकि मैं उस अच्छे चरवाह को समझ सकूं, मेरे हृदय को खोल दीजिए, ताकि मैं उस अच्छे चरवाह को ग्रहण कर सकूं। ये वास्तव होनी चाहिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या हम मांग रहे हैं, कितनी बार हमने कह दिया प्रभु हमारे विश्वास के लिए हमें विश्वास दे दिए, हमारी आंखें खोल दीजिए, हम सच्चाई को समझ सकें, हमारी सहायता कर दीजिए, हम कदम बढ़ाने के तैयार हो सकें। कितनी बार हमने इस बात की प्रार्थना कर ली। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, क्यों नहीं हम अलग अलगाव कर सकते, क्योंकि अभी तक हमारी आंखें खुली नहीं है। और इसलिए यहां पर हमें समझना जरूरी है, और प्रभु देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। यूहन्ना में हम एक एक अध्याय को देखते चले आ रहे हैं, और जब हम 11 अध्याय में आते हैं, 10 अध्याय में 11 अध्याय में आएंगे, हम चलते चले आएंगे, तो प्रभु इन सारी बातों को लेकर कर रहा है। अब आइए मेरे साथ 10 अध्याय में, जहां पर हम तीन इन बातों को, क्यों वो अच्छा चरवाह है, कैसे वो अच्छा चरवाह है, वो अच्छा चरवाह क्या करता है, हम इन बातों को कुछ देखना चाहेंगे। पहली बात, अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए उपाय करता है। ए गुड शेपर्ड ऑर्गेनाइजेस हिज फ्लॉक। एक अच्छा चरवाह अपने भेड़ों के लिए एक अच्छा प्रबंध करना चाहिए, या उपाय कहना चाहिए, यह करता है। क्योंकि वो जानता है कि उसके भेड़ों को क्या जरूरत है। 10 अध्याय, पहली बात, भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है। तीसरे पद में 10 अध्याय 3 पद, द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है। चैप्टर 10 वर्स 3, द्वारपाल उसके लिए द्वार खोलता है और भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर पुकारता है। कितनी सुंदर बात है, एक अच्छा चरवाहा, अगर मैं और आप उसकी भेड़े हैं तो धन्यवाद की बात है, प्रशंसा की बात है, आनंद की बात है कि वो मेरे और आपको नाम को जानता है। केवल मेरे नाम और आपके नाम को नहीं जानता, लेकिन बाइबल कहती है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना तेरे चित्र सदैव मेरी दृष्टि के सामने बना रहता है। तो उसका मेरा नाम मालूम है, उसको मेरा रूप मालूम है, उसको मेरा और आपका नाम मालूम है, मेरा आपका रूप मालूम है। मेरे प्रियो, 100 भेड़े हम दूर से देखते हैं एक जैसी दिखाई देती हैं, साथ भी आ जाएंगी तब भी एक साथ ही दिखाई दे, लेकिन चरवाहा जानता है इन सारी एक सी दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन कैसी, कौन कैसी, कौन क्या है। और आप जानते हैं घर में भी जब हम पेट पालते हैं, कुछ पालते हैं, उनको नाम दे देते हैं, गाय पालते तो उनको नाम दे देते हैं, अगर भेड़े भी पालने लगे तो उनको नाम दे देते हैं। तो उसने क्या कर रखा है, उसने मेरे और आपके लिए एक अपना नाम रखा हुआ है, अपना नाम रखा हुआ है। एक नाम तो कॉमन नाम है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, कॉमन नाम सबके लिए, और वो नाम मसीह नाम है जो कॉमन नाम है। लेकिन जब प्रकाश वाक्य में हम आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर हरेक को एक नया नाम देगा, परमेश्वर का वचन जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर आनंद की बात है, वो कहता है पहली बात, वो मुझे और आपको पहचानता है, वो मुझे और आपको पहचानता है। दूसरी बात, वो मुझे और आपको जानता है, जानता है। जानने का मतलब क्या है, वो मेरे और आपकी निर्बलताओं को जानता है, वो मेरे आपकी कमजोरियों को जानता है, वो मेरे आपकी भलाइयों को जानता है, वो मेरे आपके हृदय को जानता है, मस्तिष्क को जानता है। कई बार यहां तक कि पति पत्नी एक दूसरे को नहीं जाने पाते, बच्चे माता पिता एक दूसरे को नहीं जाने पाते, या दोस्त दोस्त एक दूसरे को नहीं जानने पाते, लेकिन हमारा परमेश्वर वो है, वो मुझे और आपको अच्छी तरह जानता है और उसी तरह से व्यवहार करता है। और मेरे प्रियो, किसी ने कहा है हमारा परमेश्वर, हमारा चरवा एक ऐसा चरवा है कि वो अगर आप 5 किलो का वजन उठाते हैं तो आपके ऊपर वो 10 किलो का वजन नहीं रखेगा। समझ में आया क्या मतलब है? अगर आप 5 किलो का वजन उठा सकते हैं तो आपके ऊपर 10 किलो का वजन नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि 10 किलो का वजन आप नहीं उठा पाएंगे, आप दब जाएंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो जानता है कि वो मैं और आप किस योग्य है, क्या स्तर है, क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है, क्या जीवन है, और उसी के साथ वो व्यवहार करता है। पर इसको हमें एक्सक्यूज भी नहीं बनाना है, इस बात से भी सावधान रहना है। लेकिन आगे चल करके वो कहता है, तो जानता है, मानता है, भेड़ों की अगुवाई करता है, भेड़ों की अगुवाई करता है, ठीक है। तीसरे पद में, तीसरे और चौथे पद में कह रहा है, भेड़ों का नाम लेकर पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल देता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे हो लेती हैं। भेड़ों में और बकरियों में फर्क है, भेड़ों में और गायों और भैंसों और गधे घोड़ों में फर्क है। भेड़ों में जो चरवाहा है वो आगे चलेगा और उसकी आवाज सुन करके उसके साथ आगे रहेंगी, पीछे आएंगी, समझ रहे? और इसीलिए वचन ये भी सिखाता है कि कई बार अगर बढ़ते जाती है तो 100 को 99 छोड़कर 1 को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, वो उनकी अगुवाई करता है, अगुवाई करेगा, वो भेड़ों से बात करता है। 4 पद में कहता है, वो कहता आवाज पहचानती है क्योंकि उनको आवाज देके बात करता है, उसकी भाषा वो जानता है, क्या कहकर मुझे पुकारना है, किस रीति से उसको आवाज देनी है, अगर बुलानी तो किस प्रकार से बुलानी, ये करता है। और भेड़ों से, अगर भेड़ उधर जा रही है, धीरे चल रही है, खाने में ध्यान दे रही है, झुंड को छोड़ रही है, तो उनको आवाज देगा और वो उनसे बात करता है। कितनी सुंदर बात है, क्या आपने उस चरवाहे से बात करते अपने आप को सुना है?
कौन सा दिन था जब आप बैठे थे और वो आपसे बात कर रहा था और आपने उससे कहा, प्रभु आपका धन्यवाद हो, आप मेरे अच्छे चरवाहे हैं, आपने आज मुझसे बातें की हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पहली बात तो अगर पढ़ते नहीं तो मुझे नहीं मालूम क्या परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर कैसे आज बात करता है। परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा बात करता है, अपने वचन के द्वारा बात करता है, परिस्थितियों के द्वारा बात करता है, कई बार दर्शन के द्वारा बात करता है। सब दर्शन पे ज्यादा उसको वो नहीं करूंगा, कई बार वो भ्रमित भी होते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अपने वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, परिस्थिति द्वारा वो बात करता है। पांच अलग अलग तरीके हैं बात करता है। लेकिन अगर आपके अंदर वचन पढ़ने की आदत नहीं है तो उसके अंदर आप उसकी आवाज को सुन नहीं सकेंगे। प्रश्न है, कौन सा दिन था जब आप बैठ गए। आज हम इतने व्यस्त हैं, जब मैं बात करता हूं लोगों से, क्या कल आपने बाइबल पढ़ी थी, आज आपने क्या पढ़ा, अरे अंकल माफ कीजिए, इतना व्यस्त है, सुबह उठते हैं, शाम को देर हो जाती है, देर तक सोते हैं, सुबह होता है, जल्दी से बच्चों को तैयार करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, फिर ये होता है, फिर ऑफिस जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ कुछ सब कुछ हो जाता है। सबसे बात कर लेते हैं, बच्चों से बात कर लेंगे, पति से बात कर लेंगे, पत्नी से बात कर लेंगे, पड़ोसी से बात कर लेंगे, स्कूल वालों से बात कर लेंगे, टीचर से बात कर लेंगे, सबसे बात कर लेंगे, प्रभु से बात नहीं करेंगे, प्रभु की आवाज कान में नहीं आएगी, व्यस्त है। और यही कारण है जो आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी होनी चाहिए वो नहीं है। यही कारण जो हमें करना चाहिए हम नहीं जानते हमें क्या करना, क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनते ही नहीं है। और वो कहता है बात करता, मेरे प्रियो आप जितना अधिक व्यस्त रहें, लेकिन अगर आपकी व्यवस्था सबसे बढ़कर आपके और प्रभु के साथ समय व्यतीत करने में बाधक पहुंच रही है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा शैतानी आक्रमण है। क्यों नहीं हम बाइबल अध्ययन में आ पाते, क्यों नहीं हम प्रार्थना मीटिंग में आ पाते, क्यों नहीं हम लोगों के साथ संगति में समय दे पाते, क्यों नहीं लोगों के साथ मिलकर वचन पढ़ते। हम अपने व्यस्त हैं, हमने सीखा ही नहीं है कि परमेश्वर हमारा चरवा है, वो चाहता है कि हम बात करें। और यहां तक कि आप ध्यान दीजिए, जब भेड़ें चलती हैं आपस में, झुंड में चलती हैं, तब भी कुछ कुछ बोलती रहती है वो आपस में एक दूसरे के साथ चलते हुए। देखिए मेरी कुछ आदत रही है, जब मैंने कुमार के बारे में सोचा, बाराबंकी में था मैं, वहां पहुंच गया और कुमार के यहां बैठ करके डालीगंज में भी और बाराबंकी में, और बैठकर मैं सारी चीज बात करी और देखा पूरे घंटे घंटे बैठ के कैसे कुमार पात्र बनाता है, तब मुझे समझ में आया। कभी ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि वो भेड़ों से वो बात करता है। फिर से मैं कहना चाह रहा हूं, कब समय था जब उसने बात करी। दूसरी बात, अच्छा चरवा भेड़ों को भोजन कराता है। कैसा भोजन कराता है, कांटों में ले आता है, हरी हरी चराइयों में। भजन स्थान, भजन स्थल 22, 23, 24, तीनों भजन ये चरवाह के भजन है। भजन 22, भजन 23, भजन 24, तीनों भजन वो कहता है, वो कह रहा है क्या करता है, वो भोजन कराता है। किस रीति, बड़े 7-9 पत्ते देखिए, कह रहा है, इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ा का द्वार मैं हूं, जिसने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। द्वार में हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो उद्धार पाएगा। सबसे पहली बात, उद्धार पाने का मतलब क्या है, उद्धार पाने का मैं एक संबंध में, रिलेशनशिप में बन जाना। व्हाट इज द सेल्वेशन, रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संबंध में स्थापित हो जाना, ये उद्धार है। और जब हम उद्धार की बात करते हैं, और अगर संबंध में, अगर रिलेशनशिप में, तो बिना बात के रिलेशनशिप नहीं हो सकती। कौन पति पत्नी है जो आप कहें कि हमारा संबंध अच्छा है और 10 दिन तक या 5 दिन तक या 2 दिन तक, 1 दिन तक बात ही ना करें, पत्नी आए खाना रख दे, पति आए खा के चला जाए, बर्तन धगा दे, या पति आए कुछ और कर दे, लाके सब्जी रख दे, पत्नी आके उठा ले जाए, बात ही ना हो, क्या संबंध सही है। बच्चे अगर ऐसा करें, परिवार में ऐसे, कलीसिया में आ पाए, किसी से मिलाना ऐसे चले जाए, क्या संबंध है? नहीं है। जब संबंध की बात होती है तो रिलेशनशिप की जो बात होती है तो उसमें कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, हालचाल पूछते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ये करते हैं। और यहां पर वो यही कहना चाह रहा है, वो कह रहा है दोबारा उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आ जाएगा, पिछली बार भी हम दे चुके हैं, और चारा पाएगा। चारा पाएगा। कैसा चारा देता है बेचारे? आज तो कई सारे में जानवर को जिस तरह से चारा मिला आप जानते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर ऐसे चारा दिया। इसराइलियों को कैसा चारा दिया था परमेश्वर ने? जब इसराइल पाप भी करते, कुड़कुड़ा रहे थे, फिर भी उनको प्रतिदिन ताजा मन्ना देता था। ताजा मन्ना 40 साल तक। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी बासी नहीं होता। ये मेरे और आपके लिए ताजगी है, और इसलिए कहता है इसे। तो परमेश्वर अगर देता है तो उस ताजगी में, उस वचन में संतुष्टि रहती है, उस वचन में तृप्ति रहती है, उस वचन में भरपूरी रहती है। वो अच्छा चारा है, अच्छा भोजन देता है वो। हमारा चरवा ऐसा चरवा है। दूसरे लोग क्या करते हैं जो झूठे हैं? वो किस प्रकार इधर उधर की वचन तो उनके पास है ही नहीं। अरे भैया चंगाई पाओगे, विश्वास करोगे चंगाई पाओगे। कल पर हम किसी बात करते, भैया तुमने बपतिस्मा लिया? हाँ बपतिस्मा क्यों लिया? अरे मेरे घर में बीमारी थी, उन्होंने बपतिस्मा लिया तो मैंने भी ले लिया। नहीं भाई, वो बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा। बपतिस्मा आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, पश्चाताप आपको स्वर्ग ले जाएगा, उद्धार प्राप्ति आपको स्वर्ग ले जाएगी। पापों से पश्चाताप करना, क्षमा प्राप्त करना, जीवन में यीशु मसीह को स्थान देना, इस पुलपिट से बार बार यही प्रचार किया जाता रहा है इन 10 सालों में। इस महीने 18 तारीख को हमें 10 साल इस चर्च के हो जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बाद में अगले हफ्ते हम अनाउंस करेंगे हम उसके बारे में। ये है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरह से दिया जा रहा है। वो अच्छा भोजन हमको देता है, उसके भोजन का से हमें तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 23:12 में कहता है कि उसके वचन मुझे, अय्यूब जोब चैप्टर 3:12 क्या, उसके वचन दैनिक भोजन से मुझे अच्छे जान पड़े। दैनिक भोजन, मैंने उसके वचनों को दैनिक भोजन से, मुझे नाश्ता मिले या ना मिले, मुझे रोटी मिले ना, हम कहते हैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। नहीं जी, आप अपने जीवन को अनुशासित कीजिए। अगर आपको 5 बजे उठ के बच्चे को अपने खाना खिलाना है या स्कूल भेजना है तो आप कोशिश करिए कि आप थोड़ा पहले उठें। या अगर जैसे बच्चों भेजते हैं सब काम छोड़ के, बर्तन मांजना ये काम छोड़कर, उसके बाद तुरंत बैठिए परमेश्वर के साथ समय, अनुशासित कीजिए, डिसिप्लिन करिए, टाइम बनाइए। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। हम सारी चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, लेकिन प्रभु के साथ बैठकर उसके वचन को सीखने के लिए हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। और फिर हम क्या कहते हैं? हम मसीह हैं। झूठे मसीह हैं, झूठ मत बोलिए। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया था, जो जैसा बोता है वैसा काटा जाए। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करिए। ठीक है, प्रभु ने आपके के लिए उपाय किया, सब कुछ किया, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, लेकिन उसके लिए क्या लिखा हुआ है? विलंब से कोप करने वाला, कोप करता है, न्याय करता है, इसलिए उसको तुच्छ मत जानिए। ना कह लो, ये भजन संहिता 119:11 में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में संचित किया है। संचित क्या है? जब यहां पर यूथ कैंप होता है, यूथ के हमारे बच्चे 20 दिन में 20 बाइबल की पद याद कर लेते हैं। नहीं, अच्छा है, लेकिन याद करना चाहिए। अभी बहन है जो बाइबल अध्ययन में आ रही हैं, है ना, हम आंटी बात कर रहे थे, आंटी ने कहा हम बाइबल के पद याद कराएंगे। वचन को भरना है अपने हृदय में। परमेश्वर का वचन ही भोजन वो देता है, और यही परमेश्वर का चरवाह करता है। वो कहता है मैं हरी हरी चारा, उसका भोजन ताजा है, उसका भोजन हरा हरा है, चराता है, इससे वो खिलाता है, इससे हमें ताजगी मिलती है, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, इससे हमें आत्मिक सामर्थ्य मिलती है, इससे हमें आत्मिक जीवन मिलता है, इससे हम परीक्षा पर विजय पाते हैं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, इससे हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। ये परमेश्वर का वचन है, और इसीलिए डीएल मूडी ने कहा है, या तो तुमको परमेश्वर का वचन पाप तुमको परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा, या तो तुमको पाप तुमको परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा, या परमेश्वर का वचन तुमको पाप से अलग रखेगा। ये डीएल मूडी ने कहा, फिर से दोहरा रहा हूं, या तो तुमको पाप परमेश्वर के वचन से अलग रखेगा, सुस्ती का, आलस का, दूसरी दुनियावी चीजों को प्राथमिकता देने का, बहुत सारे पाप देने का हमारे जीवन में घेर लेते हैं, ये वो तुमको परमेश्वर के वचन से अलग, या परमेश्वर का वचन तुमको पाप से अलग। चुन लीजिए आपको क्या चुनना है। चुनाव आपके हाथ में। तब आगे चल करके अच्छा चरवा भेड़ों की रक्षा करता, अपने लिए प्राण देता है। अच्छा चरवा भेड़ों के लिए, भेड़ों की रक्षा करता है, वो मुझे और आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है झूठी शिक्षाओं से। अभी पिछले हफ्ते हम किसी परिवार में शाम को गए और वो बहन बताने लगी कि उनके यहां ये झूठी साधा नहीं है, आजकल ये कोरियन जो हैं बहुत घर घर जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपके घर में आता है झूठी शिक्षा को लेकर और आपको पढ़ाना चाहता है, आप अगर बात नहीं करते आप तुरंत भाई देश आ जाए, हम हैं, किसी को भी आप फोन कर लीजिए, हम उस समय उपस्थित हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे और आपकी मदद करेंगे, या आप उनको हमारा पता दे दीजिए कि नाम ज्यादा मत बताइए, कहिए वो क्रिश्चियन है, आप उनके पास चले जाइए, वो आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि जान को मालूम चाहिए क्रिश्चियन, वो आ जाएंगे, वो क्रिश्चियन ही को ढूंढते हैं, अन्य जातियों के पास नहीं आते। झूठे शिक्षकों से सावधान रहिए, ये वो चरवाहे जो नाश करते हैं, वचन को तोड़ मोड़ कर रखते हैं, यहोवा विटनेस है, जीसस ओनली है, माता है, ये सारी चीजें जो उद्धारकर्ता को, उद्धार प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को नहीं स्वीकार करते हैं, कर्मों पर विश्वास करते हैं, दूसरी चीज पर विश्वास, दिनों पर विश्वास करते हैं, हमें उनसे सावधान रहना है मेरे प्रियो। अगर ऐसा कोई भी आपके घर में आता, मैं बाराबंकी में, मैं अक्सर चर्च में लोगों से कहता था और प्रभु का धन्यवाद प्रभु ने वहां संभाला है, और कई लोग जो हमारे विश्वासी लोग थे जो हमें बता देते थे और हमने उनकी सहायता की है। यहां पर भी मैं कहना चाहता हूं, कभी भी कोई ऐसा हो, अगर आपको कुछ हो आप हमें सूचित करिए, हम आपकी सहायता करने तैयार हैं। लेकिन क्या है, वो रक्षा करता है झूठे शिक्षकों से, हमारी रक्षा करता है, पाप से हमारी रक्षा करता है, हमें पाप से रक्षा करता है हमारे, वो क्या करता है, भजन संहिता 23:4 में लिखा है, तेरी छड़ी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। क्या, किससे? छड़ी और लाठी। एक चरवाहा अपने हाथ में दोनों चीज रखता है, दाहिने हाथ में एक छड़ी रहती है, बाएं हाथ में लाठी रहती है। लाठी भेड़ों को मारने के लिए नहीं है, भेड़ों को मारे उसकी टांग तोड़ दें, वो नहीं है। छड़ी से वो भेड़े जब तितर बितर होती है हल्के से लगाता है और उनको झुंड में ले आता है, तो झुंड में लाने के लिए, एकत्रित करने के लिए, एक साथ करने के लिए वो छड़ी चलाता है। और वही चीज कलीसिया में, जिसको हम अनुशासन की बात करते हैं, जिनको हम डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो पर कलीसिया में भी हम विश्वासियों को एक शिक्षा देते हैं, अनुशासित करते हैं, छड़ी चलाते हैं, लेकिन डंडा लाठी नहीं मारते जिसकी कमर भी टूट जाए और टांग भी टूट जाए, है ना। ये है, हम डिसिप्लिन करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते, ध्यान दीजिएगा, डिसिप्लिन करते हैं लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करते। जो अच्छे चरवाहे हैं वो अनुशासित करेंगे, हमारा काम है, सेवक का काम है, प्रभु यीशु मसीह खुद करता है, प्रभु ने सबसे बड़ा महान चरवाहा है, प्रधान चरवाहा है, प्रभु ने कलीसिया को रखा है, कलीसिया में भेड़ है और हम उसकी भी भेड़ हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए कलीसिया के जो अगुवे हैं, जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, वो चरवाहे के रूप में आपके ऊपर ठहराए गए ताकि वो आपको फीड कराएं, दिलन खिलाएं, आपकी देखभाल करें, आपकी रक्षा करें, आपकी सहायता करें। वो जो चरवाहे का गुण है उनके अंदर भी वही गुण पाया जाए और वो कलीसिया को आगे ले जाए, उनकी जिम्मेदारी आती है। लेकिन ये चरवाहा जो हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं वो कह रहा है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह में अनुशासित तो जरूर करता है, उसने पतरस को अनुशासित किया, यहुन्ना को अनुशासित किया। जब इनके जीवनों के बारे में बात करते हैं हम देखते हैं उनके जीवन को किस प्रकार से अनुशासित करते हैं, किया है कई तरह से। आगे चल करके वो उनको एकत्रित करता है, 10 अध्याय के 16 पद में, और मेरी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना। क्या मतलब कर रहे हो, इस भेड़शाला के नहीं, किसकी ओर संबोधित कर रहा है? ये यहूदियों से बात कर रहा है, उन यहूदियों लीडर से, बागुओं से बात कर रहा है। ये लोग सोचते थे कि केवल हम जो यहूदी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए हैं, हम ही केवल उसकी भेड़ हैं, अब और कोई नहीं। वो कह रहा है जो अन्य जाति हैं, जिनको तुम सोचते हो उसकी चुनी हुई नहीं है, उसकी भेड़ नहीं है, लेकिन वो भी भेड़ है, उनको भी मुझे इस भेड़शाला में लाना है, उनको भी। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे सब जगत के लोगों के लिए बलिदान किया, इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी भाषा, किसी भी देश का कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, मेरे प्रियो। और वो यहां यही कह रहा है कि और भी, अर्थात वे जिनको तुम तिरस्कार करते हो, जिनको तुम अन्य जाति समझते हो, जिनको तुम सोचते हो सुसमाचार से बाहर है, नहीं, उनको भी सुसमाचार सुनना है, उनको भी जीवन पाना है, उनको भी इस भेड़शाला में शामिल होना है। वो कहता है और भी भेड़ें हैं जिनको मुझे उनको भी अवश्य लाना है, वे मेरी आवाज सुनेंगी, वे मेरी आवाज सुनेंगी, देखिए फ्यूचर टेंस है, वे मेरी आवाज सुनेंगी, तब उनका एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। विभिन्न जातियों से, विभिन्न समूह से, विभिन्न समुदाय से, विभिन्न प्रारूप से, विभिन्न भाषा से, विभिन्न रंग से, विभिन्न रूप से, सबसे निकल करके एक झुंड बनेगा और एक चरवा होगा। यीशु मसीह हमारा चरवा है, ये विशेषता है, प्रभु ये से करेगा। सो यह कहता है वो चरवा उनको ना केवल, लेकिन ये चरवा क्या करता है, ये चरवा भेड़ों के लिए प्राण को देता है, अपने प्राण को देता है। 10:11 अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। 15 जैसे पिता ने मुझे जानता, मैं भी उसे जानता हूं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं, प्राण देता हूं। 17 पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कई लोग कहते हैं, एक प्रश्न करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे तो क्यों वो क्रूस पर मर गए, उनको तो बच जाना चाहिए था, उनको तो क्रूस से उतर जाना चाहिए था। मुस्लिम क्या विश्वास करते हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग क्या विश्वास, वो ये कहते हैं कि ईसा इस्लाम जो है वो जो है वो क्रूस पर नहीं मरे, गए थे वहां पर, लेकिन खुदा ने, अल्लाह ने क्या करा, उनके हम शक्ल का एक व्यक्ति कर दिया और वो बलिदान हुआ, लेकिन यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए, नहीं ऐसा नहीं, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है। फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, करते तो क्यों नहीं वो उतारा, अगर वो खुदा होता, परमेश्वर होता, ईश्वर होता, शक्तिशाली होता तो अपने आप को था, नहीं। वो क्या कह रहा है यहां पर, वो कह रहा है देखिए 17 में इसमें उत्तर दिया हुआ है, मैं अपना प्राण देता हूं उसे फिर ले लेता हूं, कोई उसे मुझे नहीं छीनता, कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूं, मुझे से देने का अधिकार है और फिर लेने का भी अधिकार है, यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। और इसीलिए वो कहता है, इसीलिए कहता है कि मैं और पिता एक है, 30 में कहता है मैं और पिता एक है। तो उसने स्वेच्छा से अपने आप को बलिदान किया है, स्वेच्छा से बलिदान किया, और अगर वो बलिदान ना करता तो मेरे और आपके पापों के लिए छुटकारे की कोई भी आशा नहीं होती। इसलिए अगर कोई कहता अगर परमेश्वर तो उतरवाता, नहीं भाई जी, आप ध्यान रखिए, वो स्वयं अपनी इच्छा से यूहन्ना 10:17 को याद करके खोल के दिखा दीजिए कि भैया उसने अपने आप अपनी इच्छा से दिया है ताकि मैं और आप उसके लिए उसके द्वारा बचाया जा सके, तब आगे चल करके वो अपने प्राण देता है। ना केवल है लेकिन कहता है उसमें अनंत जीवन है। अनंत 27 मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो कितनी बड़ी आशा है, वे नाश नहीं होंगी और कोई उन्हें छीन नहीं पाएगा, शत्रु उनको छीनने नहीं पाएगा। अगले जब हम उसमें क्लेम में जाएंगे तब हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में आने वाले त्वार को। लेकिन यहां पर हम कुछ बातों को देखते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवा है, हमने बहुत सारे विस्तार से बातों को देखा है, और वो कह रहा है कि उसमें अनंत जीवन है, सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन किसके लिए है, क्या सबके लिए है, सबके लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन फिर भी किसके लिए, जो कि उस पर विश्वास करे, जो को उस पर विश्वास करें, जो को उस पर विश्वास करें। यदि आपने उस पर विश्वास किया है तो अनंत जीवन आपका है, यदि आपने उस पर विश्वास नहीं किया, आप 10 जनों पर एक साथ विश्वास नहीं कर सकते, केवल एक ही पर विश्वास करते हैं, यीशु ही सच्चा अच्छा प्रधान महान चरवा है। यह है मेरा और आपका विश्वास, वही एकमात्र चरवा है, सब पर विश्वास नहीं कर सकते लेकिन यीशु पर विश्वास करते हैं। अंतिम बात प्रश्न है, क्या आपने उसको अपने जीवन का अच्छा चरवा स्वीकार किया है? कब था जब आपने पापों से पश्चाताप करके उसको अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया? मैं बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा हूं, यीशु को कब आपने विश्वास कर लिया? क्या आप उस अच्छे चरवाह के पास प्रतिदिन उसकी चराई गाय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर उसका भोजन आपको नहीं मिलता, एक बच्चे के समान जब भोजन मां भोजन नहीं देती, दूध नहीं पिलाती, वो व्याकुल होता, चिल्लाता, परेशान होता है, और जब तक उसको मां दूध नहीं देती थी वो परेशान होता है, क्या वो स्वभाव मेरा और आपका है? जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर के वचन के पास नहीं जाते, हम वैसे थे। क्या विवेक हमारा आत्मा में काटता है? क्या हमारे अंदर वो लालसा उत्पन्न होती है कि हम परमेश्वर आप अच्छे चरवाहे, मैं आपकी वाणी को सुनना चाहता हूं, मैं आपके साथ उस चरवाह को, उस चारे को प्राप्त करना चाहता हूं जिसके द्वारा मेरा जीवन संभाला जाए, जिसके द्वारा मैं हस्तपुष्ट बनूं, जिसके द्वारा मैं बलवंत बनूं, मैं शत्रु शैतान को परास्त करूं, परीक्षा पर विजय पाऊं, आप में विजय पढ़ के आगे पढ़ सकूं? क्या मेरा जीवन उसमें है? बहनों, प्रभु का धन्यवाद हो, आप कलीसिया के लिए, परिवार के लिए बहुत आशीष का कारण है। हर एक कलीसिया को, हर एक परिवार को आप के लिए घमंड है, परंतु बहनों आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी है, आपके पति की जिम्मेदारी है। अगर आप घर में इस आदत को ना डालें कि अलग समय निकाल करके परमेश्वर के वचन के साथ बैठे, उसकी वाणी को सुने, उसकी आवाज को सुने, आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं होगा। आप मार्था के सामने रहेंगी, सब कुछ करेंगे, लेकिन बहुत जल्दी उतावली हो जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए मैं बहनों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं, कृपया इस चीज के लिए आदत डालिए, प्रभु से प्रार्थना मांगिए, प्रभु से सहायता मांगिए, और प्रभु आपका एक अच्छा चरवा बन जाए। भाइयों, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अपने मित्रों की, अपने परिवारों की, अपने संबंधियों की, अपने परिवार में पत्नी और बच्चों की। अगर आप यीशु को अच्छा चरवाहा मानते हैं तो आपको आदत डालनी होगी कि आप अपना समय उस चरवाहा के साथ नियुक्त करें। आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उस चारे को अपनी पत्नियों को सिखाएं, खिलाना सिखाएं, उनको पौष्टिक भोजन करना सिखाएं। ये आपकी जिम्मेदारी, तब आपका परिवार मजबूत और दृढ़ बनेगा। ये जिम्मेदारी है, इस बात को सीखना है, इस बात को जानना है। अंतिम बात, क्या आप झूठे चरवाहों को पहचानते हैं? क्या आपके पास इतनी परख है कि आप झूठे चरवाहों को पहचान लें और आप उनके पीछे ना दौड़े? कोई आ गया, उसके पीछे दौड़ा। कई बार हम इसी भ्रम में आ जाते हैं, और आज बहुत सारे झूठे चरवाहे आपके घर में आएंगे। मैं प्रार्थना करने के लिए आया हूं बहन, हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद आपके सामने बाइबल खोल कर रख देंगे, आप उनको कुछ दान दे दें। वो केवल पेट चपटा चला रहे हैं, उनके पास कुछ और नहीं है। एक बार हमारे पास बाराबंकी में एक व्यक्ति आ गया, और वो बाराबंकी खड़ा होकर कहीं प्रचार कर रहा था, और प्रचार करते साथ हमारे साथ एक भाई विनोद रह रहे थे, और विनोद भाई उसको ले आए। अरे भाई ब्रदर, हम ये अंकल, हम प्रचार की प्रचार करते, प्रचार को लेकर आए, हमने बैठाया उसको, अच्छा लंबा चौड़ा शरीर। हमने पूछा, हमने कहा, हाँ मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्या कहाँ से आए? ये आया, बता उसने। हमने कौन सी चर्च से? कोई चर्च से नहीं। मैंने कौन सी चर्च से? कोई चर्च, मैं चर्च को नहीं मानता। मैंने कहा, आप चर्च को नहीं मानते तो फिर प्रचार क्या कर रहे हैं? हाँ सुषमाचार प्रचार कर, यीशु को प्रचार कर रहा हूँ। तो मैंने चर्च को नहीं मानते, आप किस चर्च से? नहीं मानता, चर्च नहीं, मैं प्रचारक हूँ। मैंने, आप झूठे प्रचारक हैं, उठिए यहां से निकल जाइए। उठाया और भगा दिया तुरंत। मैंने दोबारा मुड़के मत आइए, अगर आप कलीसिया को नहीं मानते आप झूठे हैं। हमें सीखना है, हमें जाना है। बहुत उदाहरण है भैया मेरे जीवन में, प्रभु की दया से 45 साल ऐसे नहीं अनुभव दिया प्रभु ने, सिखाया प्रभु ने कितनों को। दृढ़ता आनी चाहिए। प्रश्न मेरा और आपका है, क्या हम झूठे चरवाहों के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, या सचमुच हमारा मन प्रभु के पीछे है? यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है, यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। आइए हम प्रभु के सामने जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। ब्रदर कामले से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया इस वचन के लिए प्रार्थना करें गंभीरता से खड़े होकर, ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उसे चरवाहे के लिए जाने और उसके पीछे चल सकें।